राम। श्रीमद् भगवद गीता पाठ आठवां अध्याय श्लोक 11 से 20। आठवां अध्याय श्लोक 11 से 20।
Oh, Yeah. Okay, what's up?
भगवद गीता पाठ आठवां अध्याय श्लोक 11 से 20 आठवां अध्याय श्लोक 11 से 20
वसुदेव सुतं देवं कंस चानुदमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु यदक्षरौ वेद विदो वदन्ति विषन्ति यद्यतयोगीतरागा यदेच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं साङ्ग्रहेण प्रवक्षे सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च नो ज्ञाधायात्मनः प्राण मास्तु योगधारणा ॐ एकेकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् व्यप्रयादित्यजं देहं स याति परमाङ्गतिम् अनन्यचेतः सततम् यो मां स्मरति नित्यश तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययोक्तस्य योगिना मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मान संसेद्धिं परमाङ्गदा आब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्मन विद्यते सहस्रयुगपर्यन्त महर्य ब्रह्मणो विदु रात्रिं युगसहसान्तां तेहोरात्रविदो जना अव्यक्ताव्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसाङ्ख्यके भूतग्रामास एवायौ भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्यागमेव स पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्वस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यसो न विनश्यति परस्वस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नाश्यसोनविनाश्यति
वसुदेवसुतं देवं कंसचानोदमार्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं
स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 27 मई 1992 को दोपहर लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम
पराकृत नगर बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
एक तो कहते हैं कि हमें पीछे बैठे वालों को आवाज स्पष्ट सुनाई नहीं देती, तो प्रबंधक महोदय एक गरमाई कोट लगा दे
वहाँ लगा दो भी। वो स्पीकर लगा दो मेरे को कह दिया कर मैं थोड़ा जोर से बोल दू भाई और सुना दू जोर लगा
वो लाउड एक लाउड लगा दो स्पीकर। हाँ
हाँ एक स्पीकर लगा
दीजिए कहते हम चेष्टा करेंगे।
बहुत अच्छी बात इन कहते रहो आप तो सुधार होगा। मेरे को कह दिया करो उनको कह दिया करो आपका सबका अधिकार है कहने का। हम तो ड्यूटी में देने वाले मालिक तो आप ही हो। सच्ची बात है ऊंची बात समझते हैं इनके वास्ते हम आते हैं हमारे वास्ते आते हैं आप बताओ हम आते हैं किस वास्ते इनके लिए आते हैं। लाउड स्पीकर इनके लिए है ये पंडाल किसके लिए इनके लिए है हमारे लिए इनके लिए है ये मालिक है। हम तो ड्यूटी बताते हैं वक्त बताना पड़ता है ये आवे नहीं आवे देरी से आवे मर्जी है नहीं आवे पर हम नहीं आवे होता है कभी वक्त पर ड्यूटी बजानी पड़ती है ये बात है ये हमारे अंदाजा है।
एक साधक ने अपनी समस्या लिखी है।
हाँ।
वो कहते हैं कि भगवान के साथ आपकी कृपा से मेरा अपनापन हो गया।
भगवान के साथ बढ़िया हुआ
अच्छा कुछ समय पहले भगवान की हंसती हुई मूर्ति मुझसे मिलती थी और मुझसे बात करती थी।
हाँ।
लेकिन मेरी कोई गलती हो गई अब मैं उनसे क्षमा याचना के लिए कैसे जाऊं तो कल भगवान ने बहुत हमारी करुणा पुकार सुनकर के कहा कि भाई जो मैं तुझे दर्शन नहीं दे रहा हूँ अभी यही तुम्हारे अपराध का दंड है, मुझे क्या करना चाहिए?
अगर अगर रोना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, और ये दंड ये है नहीं मिल रहा है। दंड किस बात का है कि ये बात किसी को आपने कह दी होगा, एक कह देने से बंद हो जाता है, एक उसे अवहेलना कर दे क्या है ये तो यू होता ही है क्या है ये मेरा निरादर करने से भी बंद हो जाते हैं। और कोई भागवत अपराध हो जाए, भक्त का भी अपराध हो जाए तो बंद होते हैं, इनमें कोई न कोई कारण हुआ होगा। आप सोचो क्या कारण है, भागवत अपराध से हो जाता है और इसको आदर न देने से हो जाता है और ये बात औरों को कह देने से हो जाता है, इससे बंद होता है। इनमें कोई कारण बना होगा, वो कारण
अपराध के लिए भगवान ने मेरे को बार बार मना भी किया फिर भी मैंने वो अपराध कर लिया, भगवान नाराज हो गए।
ये बात और बहुत ठीक बात है, फिर भी नाराज होंगे नहीं, ये दंड रहे वो पसंद हो जाओ, मैं दंड बहुत राजी हूँ, आप राजी हो जाओ, दंड दे करके हो जाओ, दुख दे करके हो जाओ, आप राजी हो जाओ किसी से ही, बस फिर हो जाए भगवान। भगवान तो माँ है सदा की, एक जन्म की माँ भी माफ कर दे, सदा की माँ में इतनी शक्ति नहीं है क्या? तो ये माता के साथ हो गई, बहुत बढ़िया बात।
इस विषय में आपको और भी कुछ कहना, जो ऐसा मान रहे हैं कि हमको भगवान दिखते हैं करते हैं, इस विषय में आपको कुछ कहना?
हमारे कहने की कहनी नहीं चाहिए बात, धन की पूंजी आप बताते नहीं, फिर ये पूंजी बताने की है? ये चीज बताने की नहीं है, दूसरे को बताने से वो बात नहीं जाती, उसमें कमी आ जाती है। हर एक भाई बहन को पारमार्थिक अनुभव को बताना चाहिए, मेरे को ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा, उस मान बढ़ाई के बीच में उड़ जाती है चीज, तो सावधान रहना चाहिए और उसको महत्व देना चाहिए कि तो भगवान की बड़ी भारी कृपा है, अवहेलना नहीं करने, ये तो क्यों उंगलिया ही करे क्या है, तो अवहेलना करने से बंद हो जाए।
महाराज जी, जिसको भगवान के दर्शन होते हो,
हाँ?
क्या उससे अपराध बन जाता है?
बन जाता है। देखो अपराध तो जानकार से ही बनता है, अनजान का अपराध होते ही नहीं, अनजान है वह आवाज क्या हुआ, अनजान होकर के जानकार होकर करता वो अपराध बड़ा होता है, अनजान प्रेम हो जाओ तो थोड़े से क्षमा हो जाता है, वो तो अनजान पना है। हाँ ये बात अवहेलना,
ये कहते हैं संसार की आसक्ति में, परिवार में, रुपए में, पैसे में जब तक मोह रहेगा,
हाँ,
तब तक तो राम राम चाहे कितना ही करो कोई फायदा नहीं, ऐसा लोग कहते हैं क्या?
बिल्कुल गलत बात है, अनजान है अनजान है अनजान है, पता नहीं है कोई समझ ले रहा, ये बैठ तो है नहीं, तू यूँ कर दे सारी ठीक रोग मरी तू और दवाई कर दे, ऐसी दवाई को ब्रह्मचर्य के समान माना है, जानते हैं नहीं दादी दादी इस तत्व को जानते नहीं और समझी दे देते हैं, राम नाम से तो कभी उथल पुथल हो जाए, वो जानते नहीं उनकी बात मान हुआ, अनजान की बात क्यों मानते? आज बड़े स्थिति की बात ये है, मंदिर में जाने वालों की बात नहीं मानते, मंदिर में नहीं जाने बाप दादा पीढ़ी सब नहीं गए उनकी बात मानते, बड़ा काला दिन है हमारे लिए, जानकार से नहीं मानते, अनजान की बात हम आदर करते तो उसे तो पता नहीं होगा, अनजान मत मान मत नहीं मत।
आप कहते हैं पाप और पुण्य ये भी एक विवेक में काम करते हैं, विवेक यहाँ भी काम करता है पाप?
हाँ हाँ, अरे पाप करने विवेक काम नहीं करता, तो बम बनाने में विवेक काम नहीं करता है या? आप बताओ कोई बताओ।
उसके बाद आगे पूछ रहे हैं,
हाँ,
कि क्या ये जानना मात्र जो चेतन स्वरूप है वो और विवेक एक ही है क्या?
एक हो जाते एक है नहीं, विवेक तो चेतन और जड़ को अलग अलग जानने का है, और तत्व ज्ञान होने पर जड़ का अत्यंत अभाव हो जाता है, जिन में तत्व रह जाता है वो ज्ञान होता है, ये विवेक ज्ञान साधन ज्ञान है।
परमात्मा आत्मा जगत के निमित्त कारण है या उपादान कारण?
दोनों कारण है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, अभिन्न निमित्त उपादान कारण। वास्तव में बात क्या है, ये प्रक्रिया की बातें हैं। वास्तव में कारण जगत का विवेक का आदर न करना, ये है वास्तव में जगत का कारण। विवेक का आदर कर तो अज्ञान मिट जाएगा। विवेक का आदर तो करना नहीं, और कर्ण के साथ का मानना, और करते तो अभिमान से रहित होने का चेष्टा करना और कर्ण को साधक मानना, महान भूल है। करें क्या, पूछते ही नहीं कोई भाई, पढ़े और पूछना चाहिए। भगवान को कारण माना तो अभिन्न में तो प्रधान कारण है, वास्तव में जगत का कारण है। अज्ञान मेवा से मूल कारणम तद्धान मेवा विधो विधीयते विद्यैव तन्नास विधो पतीयसी न कर्म तद्दं सविरोध वीरितम। अज्ञान मेवा से मूल कारणम, तो अज्ञान क्या, ज्ञान को न मानना, इसका नाम अविवेक। जानते हैं और मानते नहीं, ये बहुत बड़ा भारी अपराध ये है। हमारे कोई गाल दे तो बुरी लगती है, दूसरे गाल दे देते हैं। हमारे कोई झूठ बोले तो बुरा लगता है, हम झूठ बोल देते हैं। हम धोखा देना बुरा लगता है, फिर हम धोखा दे देते हैं। ये महान अपराध है, ये जन्म मरण का कारण है, ये वास्तव में सब अनर्थों का कारण है, नरकों का 14 लाख जोड़ी का कारण है। जब विद्या बने कितने पढ़ लो, ये अपराध रहेगा तब तक मुक्ति नहीं होगी। मन जाने सब बात, जान बूझ अवगुण करे, अरे क्यों चाहत कुशलात कर दीपक कुएं पड़े। अब देख कर कुएं पड़े चोट नहीं, मरेगा तुम तो चोट की बात क्या करे। इस बात जानते हैं और मानते नहीं। हमारे साथ भगवान ने सब शास्त्रों का तत्व सबको दे रखा है, चाहे पढ़ा हो चाहे अपढ़ा हो, कोई क्यों न हो, उसको शास्त्रों का तत्व मनुष्य शरीर, ध्यान देकर सुना मेरी बात, मनुष्य शरीर जब परमात्मा की प्राप्ति के लिए दिया गया, तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन छिपा कर रखे भगवान ने। मनुष्य शरीर तो दे दिया प्राप्ति के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए, और मनुष्य शरीर में करने लायक काम का ज्ञान न दे भगवान, अंधेरा, ऐसा हो सकता है कभी? निमंत्रण तो हमारे दे दिया, भोजन दे ही नहीं, ऐसा हो सकता है? मानव शरीर दिया है जीव के कल्याण के लिए, तो कल्याण के लिए सामग्री पूरी की पूरी है, सामर्थ्य और सामग्री कभी नहीं है। दो बात है, तो सामर्थ्य भी हम असमर्थ है, ये नहीं है। ये क्या करे, हमारे गुरु नहीं मिले, ग्रंथ नहीं मिले, महात्मा नहीं मिले, संत नहीं मिले, ये गलतियां है। ये सब सामग्री भगवान ने दी है विश्वास रखो। कहते महात्मा मिले ही नहीं, हम क्या करें, जो जो जैसे महात्मा मिले उनसे पूरा नाम ले लिया, काम कर लिया, जिस क्लास में पढ़ते हो वो पूरी पढ़ाई कर दी, अगर नहीं करी तो कैसे कर सकते, हमारे पढ़ाने वाला अध्यापक नहीं मिला, और क्लास भगवान बदल जाएंगे। मेरा तो यहाँ तक ख्याल है आप उसी क्लास में रहना चाहते हैं, परंतु भगवान का ऐसा विधान है जो टिक नहीं रहेंगे, बदल देंगे, हाय हाय करोगे, रोते रहोगे, तो नहीं दूसरे संत के पास भेज देंगे, फिर से आपको होश होगा, अरे वहां रहते तो इतना देर होता। ये तो भगवान बहुत कृपा करी, आपको पूछे ही नहीं, आपकी सम्मति नहीं लेते। कृष्ण मंदिर जगत गुरु वो हेडमास्टर है सबका, तो उसकी सब निगाह में है, जिसके जितना साधन बना है उससे अगर साधन करने वाली क्लास बदल कर उसको भेज देते हैं वहां। ऐसी बात हुई है, होती है, ऐसी बात पक्की है। इस बात से आप निश्चिंत रहो, आपको सत्संग के लिए तो निमंत्रण दे रहे, और ये त्रिपाल बनावे ही नहीं, मंडप बनावे ही नहीं, आप रक्षा करे ही नहीं, ऐसा होता है कभी? मनुष्य भी दिया है जिसमें सामर्थ्य और सामग्री, ध्यान देना है, सामर्थ्य भी दी है और सामग्री भी दी है, कमी नहीं है। आप दुरुपयोग करते हैं, ये बड़ा होते, दुरुपयोग मत करो, सदुपयोग करो। हम तो गीता जी की व्याख्यान बहुत वर्षों से करते हैं, पर जब टीका लिखने लगे तो कई बातों का नया ज्ञान हुआ। तीसरे अध्याय के लिखते समय एक बात मन में आई कि केवल आप वर्ण आश्रम अपना मर्यादा है, उस मर्यादा के अनुसार चलो मुक्ति हो जाएगी। मुक्ति के लिए कोई नया साधन करना ही नहीं पड़ेगा। ये बात समझ में आई गीता की टीका लिखते हुए। परस्परम भावयन्तः श्रेय परम अवाप्स्यते देवान भावे सामने न ते देवा भाव यंत हुआ परस्पर भाव। एक एक पूजन करो, एक एक आदर करो, एक एक सत्कार करो, एक एक पोषण करो, अपनी शक्ति सामर्थ्य उनके अनुसार दूसरों का हित करो। अपनी शक्ति सामर्थ्य समय समझ ये चारों बचाओ मत। शक्ति सामर्थ्य सामग्री समझ समय ये न बचा करके दूसरों का हित करते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। बिल्कुल तो भुक्ति के लिए नया काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामग्री सब दी हुई है। गृहस्थों के, साधुओं के, बहनों के, माताओं के, भाइयों के, सबके लिए सामग्री पूरी दी हुई है। दुरुपयोग मत करो, ये दंड होता बड़ा दुरुपयोग करने का। जानते हैं ऐसा मानते नहीं। कोई हमारे को हमारे झूठ न बोले, हमारे को धोखा न दे, ऐसे झूठ बोलते हैं धोखा देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध है। निगर रखो कि अपने जैसे किसी को धोखा नहीं देंगे, अन्याय नहीं करेंगे। आपके पास में विवेक है। विवेक के विषय एक बात कहता हूं, आप ध्यान दें। विवेक कर्म का फल नहीं है। बुद्धि जो होती है बुद्धि कर्मानुसारिणी कहते हैं। तो बुद्धि तो एक लट्टू की तरह है। लट्टू बिजली नहीं है, बिजली इसमें आने वाली शक्ति है। ऐसे बुद्धि में आने वाला विवेक एक शक्ति है। वो शक्ति कर्म का फल नहीं है। कैसे नहीं है ध्यान देकर सुने। पहले शुभ कर्म किए तब मान लो कि हमारे विवेक मिला, तो शुभ कर्म अशुभ कर्म की पहचान पहले कैसे हुई? मानना पड़ेगा शुभ अशुभ काम का विवेक पहले है, पीछे शुभ काम होगा उसका फल अच्छा होगा। तो विवेक आदि पहले है, इस वजह से कर्म का फल नहीं है विवेक। विवेक कोई शुभ कर्म का फल नहीं है। ये तो भगवत दत्त है, कृपा है, ये प्राकृत चीज है, स्वतः सिद्ध है विवेक। भागवत रामायण में आता है अस विवेक देव दे ही विधाता, ऐसा विवेक देते हैं विवाद। और सचा प्रसंगात हम वीर संवेदो भूमि हित कर जोशनाथ उसे सेवन करते आसु अपवर्ग वर्तमानी श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रम से अनुक्रम हो जाएगा सब। तो विवेक है वो स्वतः एक शक्ति है। ये स्वतः सबको मिला है, पशुओं को मिला है, पक्षियों को मिला है, वृक्षों को मिला है। मनुष्य में जैसे विकास है तो विकास नहीं है। यहाँ विकास के जो तंतु है वो मनुष्य की खोपड़ी में जितना है इतना है नहीं। गायों का माथा में ऐसा हो जाता है, ऐसा सीमा सिंह आ जाते हैं। तो वो विवेक वहाँ केवल खाने पीने में काम करेगा। ये खाने की है नहीं खाने की है ये चीज समझ लेंगे। कुत्ता सूंघकर समझ लेता है, गाय सूंघकर समझ लेती है। जो अखाद्य वो नहीं खाते हैं। कभी कभी धोखा में आ जाते हैं पशु पक्षी, ये भी आ जाते हैं। सुग्गा तोता रखते हैं ये राजा लोग, ये शौक ही नहीं है। जो भोजन करते हैं पहले तोता उतरेंगे, वो खाएगा तो जहरी चीज वो खाएगा नहीं, फेंक देगा। तो वो नहीं खाना चाहिए उसे। इस बार सुग्गा तोता बना रखते हैं रक्षा के लिए। इनको पक्ष इनको ज्ञान है, अपने खाने पीने का विवेक है, परंतु सतसत का विवेक नहीं है। नित्य अनित्य का ये विवेक नहीं है जिससे कल्याण हो जाए। क्यों कल्याण के लिए भोग योनि है, तो भोग योनि भोगने के लिए शक्ति दी है भगवान ने, तो मनुष्य को शक्ति दी है कल्याण करने की। क्यों कल्याण का अधिकार बना है इसको। एक श्लोक सुनाऊं मैं आपको, बढ़िया। उपभोग तुम न जाना थी स्वयं प्राप्ति भी मानवा। मनुष्य को लक्ष्मी प्राप्त हो जाए तो भी लक्ष्मी को भोगना नहीं जानता। धन प्राप्त हो गया पर धन का कैसे उपयोग करना चाहते ये जानता नहीं। जानता क्यों नहीं कि विवेक का आदर करता नहीं। ना तो स्वयं जानता है न संतों की शास्त्रों की बात मानता है, तो बिल्कुल वो गलती होती है। कैसे स्वयं प्राप्त भी लक्ष्मी प्राप्त हो गई, तो भी वो जानता नहीं है कैसे आकंठ जल मग्न हो भी स्वा कुत्ता को गले तक पानी में खड़ा कर दो तो पानी को चाटेगा ऐसे पीने खूब मौज से पी नहीं सकता वो चाटना नहीं आता पीना आता ही नहीं उसको ऐसे लक्ष्मी प्राप्त होने पर भी लक्ष्मी का कैसे उपयोग कर नहीं आता नहीं जानते ऐसे साधु है ना भी बड़े चालाक होते हैं जी इनको रसोई बनाना खाना मकान में रहना मकान को साफ रखना जितना साधु होगा उसको नहीं आता देख लो आप घरों को देख लो घर में देख लो साधुओं के स्थान में उसको देख लो धन प्राप्त हो गया क्या है उनके उपयोग का काम काम समझते नहीं तो ये क्यों नहीं समझते कि विवेक का आदर नहीं करते ना तो अपने विवेक का आदर करते हैं ना संत महात्माओं की भगवान की बात सुनते हैं ना विचार करते हैं तो स्वयं तो जानते नहीं जो कि मानते नहीं ये बड़ा है ये समाज तारा है चार सौ चौवालीस लोग तो विवेक भगवत दत्त है विवेक सबको दिया हुआ है अपने निर्वाह हुआ तो वृक्षों को दिया है पशुओं को पक्षियों को घास को सबको दिया है और कल्याण करने का विवेक मनुष्य मात्र को दिया है सामर्थ्य और समझ ये पूरी दी है सामग्री समझ सामर्थ्य समय ये चारों चीजें भगवान ने मनुष्य मात्र को खुली दी है उसमें तो कमी नहीं है स्वयं इतना विवेक क्रम नहीं कर सकता तो सत्संग से ही होता है सत्संग करने से विवेक जागृत होता है समझने की बात है मेरे मन में आती है जैसे गीता में जिन विषयों का वर्णन हो तो ज्ञान होता ही है परंतु तो गीता पढ़े हुए ठीक विचार करेगा तो ब्याह कैसे करना छोरा छोरी कैसे करना उत्पन्न हो तो क्या करना उनके ये बातें भी गीता से आदमी को पैदा हो जाती है जिन गीताओं गीता में वर्णन नहीं जिनका उन बातों का विवेचन भी गीता से हो जाता है अलोक घरों को बातों ज्ञान हो जाता है विचित्र आश्चर्य जैसे ज्ञान होता है समझते हैं ये ज्ञान कहाँ से आ गए भाई हम तो जानते ही नहीं इतना तो जानते नहीं परंतु गीता की कृपा से हो जाता है बहुत पढ़े पढ़े पंडित चारों वेद शास्त्र पढ़े हुए ऐसे वे भी कर्मों का निर्णय करने में गलत कर जाते हैं मैंने ऐसे विद्वानों के लेखों को देखा है पढ़ा है मैंने विचार किया है उनमें भी गलतियां देखी है ये पढ़ने से इतना नहीं आता है आप सामने काम पड़ा है ना कि विभूति राम राम होता है विभूति विभूति में ऐश्वर्य होता है याद है ना आपके पास एक पंडित थे आपने भी जिनसे पढ़ा है उनके सामने मेरे उनको विवाद हो गया मैं कहते ये बात नहीं है तो मुझे नहीं मानता तुम्हारी बात बस मानू इस बार महाराज बताया पढ़े लिखे अच्छे छह शास्त्रों के अध्यापक सुनिए को पढ़े हुए अच्छे माने हुए विद्वान आपके सामने मेरी भी उनकी बातें हुई ये गवाह है हमारे गहरे कितने शास्त्र में गहरे उतर जावे बहुत विशेष उनकी बात सुनी मैंने जिनकी मैं बात कह रहा हूँ वो इसमें रस शास्त्र में रस गंगा जल पढ़े रस शास्त्र में वो नई सूत्र बताते हैं ऐसे पढ़े रहे है नहीं ऐसी बात नई सूत्र उनकी शास्त्र में नई सूत्र इतने पढ़े हुए तो तात्विक बातें चलती है विवाद ठीक करना भी नहीं कह सकते मेरे काम पड़ा है मैंने देखा है ये पढ़ाई से उचित नहीं होती है जो वास्तव में भगवत गीता से बहुत विस्तृत ज्ञान होता है असाधारण से गीता क्या है छोटा सा ग्रंथ है मामूली ये तो क्या खा कर गए पढ़ाई में की सर से अरे वास्तव में आचार्यों की सरल की सर सीधा सीधा गहरा इतना भाव है पढ़ते ही चल जाओ विकास होते ही चल जाएगा और बोलो कोई बंद अब बहुत थोड़ा और है बड़ी विचित्र की बात है बड़ी अलौकिक बात है भगवत गीता जैसा ग्रंथ नहीं है विदेशी भी इसकी प्रशंसा करते हैं अच्छे पढ़े लिखे मुसलमान हो ईसाई हो वे भी सच्चे देशी गीता की प्रशंसा करते हैं जिनके गहरे उतरते हैं पढ़ते हैं समझते हैं बेसमझे हिंदी से पढ़ते ही नहीं गीता को और शास्त्रों को पढ़ते हैं बड़ी बड़ी अध्ययन करते हैं बड़ी बड़ी डिग्रियां प्राप्त करते हैं गीता की कोई ख्याल विलक्षणता आवेगी आत्मा विचित्रता आवेगी बिल्कुल ऐसी बात है करके दे लो क्या अगले हाथ कंगन वो क्या रसी हाथ में कंगन ऐसी आरस देने की जरूरत है हाथ में सामने दीजिए भगवान की वाणी बहुत विचित्र है और बड़ी सरल बड़ी सीधी बड़ी गहरी बड़ी गहरी बहुत विचित्र जीव के कल्याण के लिए बहुत विचित्र सुगम बहुत थोड़े शब्दों में कहा है परंतु जिस किसी विषय का एक बार नहीं दो बार तीन बार चार बार पांच बार कह दी उसी तत्व को शब्दांतरण से कई बार कह दी विस्तार पूर्वक कह दी छोटे से ग्रंथ में इस वास्ते सिद्धरा चार्य अपने सुबोधित टीका में गीता की टीका में लिखते है शेषा शेष मुख व्याख्या एक वक्र था शेष के अशेष मुख हजार मुख 2000 जीव उनकी जो चतुर्ता है वो एक जीव में भगवान के एक भगवान शेषा शेष मुख व्याख्या चातुर्य एक वक्र है एक मुख है ऐसे अद्भुत भगवान की वाणी है विशेष है बहुत विचित्र गहरे उतरो इसको पढ़ो तो पता रहेगा तो जैसे देखते ही नहीं सांस पढ़ कर हमारी सांस पढ़ के जानकार हो जाओगे कई बातों में जानकार हो जाओगे तो जानकार से वो जानकारी क्या काम से उद्धार न करे विद्युतता वो है जो कल्याण करे अपना और दुनिया का सबका कल्याण करे तो वो गीता में बहुत सुगम सुगम बातें लिखी है बड़ी कठिनता से जो तत्व प्राप्त होता है बड़े बड़े साधन बताए हैं तो मेरे तो भाई संतों की कृपा से ऐसी बातें मेरे को मिली है बहुत सीधी सीधी उनको सीख करो तो बहुत जल्दी काम हो जाए अरे उसके लाभ होता ही है आज इस सज्जन से बात हुई मुझे अगर लाभ न हो तो इतने आदमी क्यों आते हैं क्या सब अकल है सब में अकल नहीं है क्या आते हैं घर का धंधा छोड़ते हैं खर्चा लगाते हैं सब सबसे कष्ट सहते हैं फिर भी सत्संग आते हैं तो लाभ उनको होता है तो बात है कैसे आगे से आते हैं सुखी सिला कौन चटेगा क्यों आएंगे तो लाभ होता है अब ये असली लाभ सा हो जाता है हम तो एक ही बात कर रहे हैं असली भूख सा ये भोजन की कमी नहीं है भूख की कमी है वो भी आपके विचार के कारण से विचार करो था भूख तेज हो जाए ये मौका अभी है मनुष्य जन्म में ही भोगों का मौका सब जगह है अच्छी अच्छी बातों का मौका सब जगह है परंतु मुक्ति का मौका अभी है यार अभी है अभी है अभी है बिल्कुल बहुत विचित्रता से इसमें शंका उत्ती करो आप मैं मैंने ऐसे कहा कि ये तो बहुत सुगम है, तो हमारे संत बोले कि सुगम है तो तत्व प्राप्ति वाले को टोड़ी तो नहीं दिखती, इसने कितनी टोड़ी होगी, उस तत्व क्या हो गया, अधिक तो नहीं सुगम नहीं है, सुगम नहीं है वो कैसे बताओ, बताओ बात ऐसी है, कर भी कोई देखो काम होगा जरूर होगा, ये फैल होने वाला नहीं है, रामबाण उपाय है, रामबाण कभी फैल नहीं होता, विद्युत लाभ होता है, शेर जी ने कई बातें कही है कि हमारे को ज्ञान पहले हुआ शास्त्रों में पीछे मिली, और कई बातें अभी तक पुस्तकों में मिली नहीं है जो मेरे जानने में आई, शेर जी कई बातें है, देश काल और प्रकृति इनका जो असली सूक्ष्म ज्ञान है मेरे जैसा वो पुस्तकों में लिखा हुआ अभी तक नहीं मिला है, और कई अब अनुभव में आ गई उसके बाद पुस्तकों में मिली है,
कौन सी बात
जो शास्त्र में अभी तक मिली नहीं, काल और देश होता है, काल है ना ये क्या है, काल चीज देश क्या चीज है, उन्होंने लिखा भी अपने देखो प्रकृति भी वहां चुप हो जाती है, बहुत सी बातें हमारे को पहले भी मिली पशु पुस्तकों में मिली, आज लोग कहते हैं पुस्तकों में है वे बातें सब सच्ची है क्या बताओ, और फूला सिंह की बात कहते हैं फूला सिंह पढ़े हुए नहीं थे गाया चलाते थे सिख थे फूला सिंह जी भेड़ बकरे गवा चलाया करते थे, तो एक संत ने कहा एक संत ने बात बताई वो करता हूँ लेखा करता हूँ भजन नाम नहीं आता हूँ भजन करता हूँ लेखा करता हूँ लेखा वही लेखे लेखे वो इतनी विशिष्ट हो गई, पुराने कल्याण मन की जीवनी आई है पंडित ने लिखा मैं गया मिला उनसे तो उनसे पूछा कि सत्य प्रतिष्ठायां क्रिया फलाश्रयत्वम सत्य की प्रतिष्ठा होने पर उसकी जबान कहे जैसी सत्य हो जाती है ये वस्तु बासी है, ये पोथी मिलेगी है हमारे पोथी मिलेगी है ऐसी बात पोथी मिलेगी है, पोथी आ जाता है महाराज ये कोई आचरण में आती है अनुभव की पोथी मिलेगी है, तो महाराज कैसे उन्होंने अर्थ किया इसका सत्य प्रतिष्ठा क्रिया प्रयास तो हम गीता की और योग दर्शन के भाष्य में टीकाओं में कहीं मेरे को मिला नहीं वो जो मैंने बताया फूला सिंह ने बताया, वो ये बताया कि सत्य की प्रतिष्ठा होने से उनका अंतकरण वाणी सब सत्य हो जाता है, जो होने वाली बात ही उनकी वाणी से निकलती है बात निकलती ही नहीं, लोग समझते वाणी निकलेगी होने वाली अरे अवश्य भाव होने वाली सत्य अंतकरण में सत्य ही निकलेगी इस बात वैसी हो जाती है, ये व्याख्या हमने नहीं देखी ये उदर्शन व्याख्या हमने नहीं देखी तो भूल से भी गई अक्सर जानते ही नहीं कहे वो कहते थे गौआ ये खेत है ना इस खेत में तुम्हारा भाग भी है और मनुष्य का भाग भी है, इस बात से अभी खेत में नहीं जाना, अब मनुष्य अपना भाग नहीं लेंगे सब भाग तुम्हारे को ही मिलेगा ही तुम्हारे लिए है वो, इस बात से अभी नहीं जाना, वह लेखा में लग जाते गाय नहीं जाते खेत में नहीं जाते चोरों को पता लगे चोरे गाय ऊपर जाते मनुष्य का भाग है और जैसे तुम्हारा ही है तुम्हारे को मिलेगा ही और कहाँ जाएगा क्यों जाओ मनुष्य भाग नहीं जाना गायों में गायों मान लेती कितना बढ़िया विवेक है तुम्हारा ही भाग है मनुष्य अपना भाग ले देगा ना तो किसको मिलेगा सच चुड़ी हो तुम्हारी नहीं मिलेगी तुम्हारा भाग है अभी नहीं जाना अभी हमने भाग अपना ले ले की बात तो अनुभवी पुरुष जो बात आती है ना वो शास्त्र से सीखी हुई बात नहीं आती। ये मैं नहीं कहता हूँ शास्त्र मत पढ़ो, पढ़ो परंतु शास्त्र की भरोसे मत रहो, परमात्मा का भजन करो, स्मरण करो, जो वो बुद्धि पैदा होगी जो शास्त्रों से अतीत तत्व की बात है। शास्त्र